आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया वृंदावन में बंदर के साथ कैसे डील करते हैं? बंदर बहुत चालू होता है, एकदम ऐसा लगेगा कि बहुत बिजी है, लेकिन जैसे ही नजर हटती है वो आपका चश्मा उठा के लेके जाएगा सबसे पहले। तो बंदर वृंदावन में चश्मा बहुत उड़ा लेते हैं। आपको पता है क्यों? क्यों बंदर चश्मा लेते हैं वृंदावन में?
ये तो पता नहीं, गूगल पिछली बार गया था
ना, कितने लोगों को एक्सपीरियंस हुआ है चश्मा चला गया?
मैं बैठा था कब बंदर चश्मा आके लेके गया मालूम नहीं, वो माताजी ने तो बताया तुम्हारा चश्मा गायब हो गया।
देखो कितना एक्सपर्ट है कि मतलब चुराता भी और तुमको पता भी नहीं लगने देता है। हम लोग कालियादाह में उधर चल रहे थे यमुना के पास में, मैं और मेरा दोस्त दो चार लोग ऐसे सब यात्रा में गए थे, तो बहुत सारे लोग थे चल रहे थे, तो मेरा दोस्त आगे आगे चल रहा था, हम लोग मैं किसी और के साथ पीछे बात करते चल रहा था, और वो बंदर आया और आके और बिल्कुल वो लोग चल रहे हैं रास्ते में, ऐसे भी नहीं खड़े, चलते चलते बंदर आया और उसने ऐसा हाथ रख के उसके कमर के ऊपर चढ़ गया और ऐसा कंधे के ऊपर दूसरा हाथ रख के और ऐसा चश्मा निकाल के लेके गया। उसको लगा कंधे पे मेरे दोस्त ने हाथ रखा है, ऐसा पता भी नहीं चला कि कब बंदर लेके गया उसका चश्मा। तो बंदर चश्मा क्यों लेते हैं? सबसे पहले तो ये चीज हमको परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज ने बताई थी कि बंदर हमसे कहना चाहते हैं कि अपनी भौतिक दृष्टि से वृंदावन को देखने की कोशिश मत करो, इसलिए वो कहते हैं कि ये चश्मा ले जाते हैं, कि भौतिक दृष्टि से अगर हम वृंदावन को देखने की कोशिश करेंगे तो मात खा जाएंगे, है कि नहीं? कई बार क्या होता
है, जाकू मंदिर है शिमला में, वहाँ पे भी हुआ था मेरी वाइफ के साथ अभी दिसंबर में।
ये बंदर लंगूर वगैरह बड़े बदमाश होते हैं,
और फिर प्रसाद देने के बाद पीते रहते
हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, प्रभुपाद की स्टोरी में आपको बताऊंगा, लेकिन पहले मैं इस मुख्य जो मुद्दा आ गया उसको मैं लेता हूँ कि वृंदावन को भौतिक दृष्टि से देखने की कभी कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया पुरुषोत्तम मास में कि 64 अंग जो भक्ति के दिए हैं उसमें से एक महत्वपूर्ण अंग रूप गोस्वामी ने बताया है धाम निवास, के धाम में निवास करना, मथुरा मंडल में, वृंदावन में, मायापुर, नवद्वीप, जगन्नाथपुरी, नाथ द्वारा आदि जो है इसमें वास करना चाहिए। उसकी बहुत महिमा दी है। क्यों महिमा दी है? क्योंकि वहां वास करने से हमको भक्ति करने का बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है और बहुत सुपर स्पीड के अंदर भक्ति होती है, क्योंकि भगवान में, भगवान के नाम में, भगवान के रूप गुण लीला और भगवान के धाम में कोई फर्क नहीं है। भगवान का धाम जो है वो स्वयं भगवान है ना, भगवान अपने धाम के रूप में प्रकट हुए हैं। बलराम जी जो है वो धाम के रूप में प्रकट होते हैं, बलराम जी भगवान जी के अवतार है, और जब अपना विस्तार करते हैं तो सबसे पहले धाम का विस्तार करते हैं। तो धाम जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और भगवान से अभिन्न है, और कोई व्यक्ति अगर धाम में जाके ऐसा समझे कि धाम ऑर्डिनरी है तो ये धाम अपराध होता है। आज हमने सुबह क्लास में नाम अपराध के बारे में सुना, राइट? प्रभु जी बता रहे थे, तो जैसे नाम अपराध होते हैं कि जिन जो भक्त भगवान की जो प्रचार करने में लगे हुए उनकी निंदा करना, गुरु की अविज्ञा और इस तरह के जो इतने 10 नाम अपराध हम आज सुबह सुन रहे थे, वैसे ही धाम अपराध भी होते हैं कि धाम का अपराध नहीं करना चाहिए। और कोई व्यक्ति अगर धाम का अपराध करता है तो उसकी भक्ति तुरंत नष्ट हो जाती है, क्योंकि धाम भगवान का धाम और भगवान अभिन्न है, एक ही है ना, भगवान अपने धाम के रूप में आते हैं। इसके लिए धाम को देखने की चेष्टा कभी भौतिक दृष्टि से नहीं करनी चाहिए कि ऐसा है कि कई बार क्या होता है कि जैसे हमारे एक ना गौरांग प्रभु जी बता रहे थे कि मैं जब इस्कॉन में आया तो कृष्णा बुक के अंदर वृंदावन का वर्णन पढ़ा, है ना, प्रभुपाद जी लिखते हैं और काफी बहुत अच्छा दसम स्कंद के अंदर वृंदावन का वर्णन दिया है, और आप अगर भागवत का प्रकाश प्रभुपाद जी की एक पुस्तक है उसको पढ़ो तो उसके अंदर पूरा रेनी सीजन ऑफ वृंदावन, समर सीजन, ऑटम सीजन, शरद ऋतु, शरद पूर्णिमा का इतना विस्तृत वर्णन, इतना अच्छा वर्णन दिया है कि वृंदावन कैसा है, यू नो, जैसे हमारे नरोत्तम दास ठाकुर क्या भजन गाते हैं, वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर आवृत कालिंदी नीर राज हंस केली कर ताहे शोभे कनक कमल तार मध्य हेम पीठ अष्टदले वेष्टित अष्टदले प्रधान नायिका तार मध्य रत्नासन बोसिया छे दुई जन श्याम संग सुंदरी राधिका ओ रूप लावण्य राशि आमिया बड़ी छे खासी हास्य परी हास्य संभा शाने नरोत्तम दास कोहे नित्य लीला सुख मोय सदा ईश्वरक मोरा मन वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर तो भी ऐसा भजन गा रहे हैं और इस भजन का तात्पर्य समझोगे और इसका अनुवाद देखोगे तो वृंदावन एक रम्य स्थान है दिव्य है और चिंतामणि धाम है ना। तो चिंतामणि धाम क्या होता है आप लोग को पता है, किसी ने अनुभव किया चिंतामणि धाम का? तो आप उस पर बैठ जाइए, आप नीचे बैठे मेरे को ऐसा लग रहा है।
ठीक है, ठीक है।
तो चिंतामणि धाम अनुभव किया किसने? किसी को पता है चिंतामणि धाम क्या होता है? मैं आपको बताता हूँ, ये धाम जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं मटेरियल वर्ल्ड भौतिक संसार, ये कौन सा धाम है? ये चिंता फॉर मनी धाम है। चिंता फॉर मनी धाम है और वो चिंतामणि धाम है जहाँ पर कोई चिंता नहीं होगी हमारे को ना। तो चिंतामणि टच स्टोन बोलते हैं जिसको कि वहां के हर पत्थर जो है वो पारस मणि के समान है। दिव्य चिंतामणि धाम रतन, रतन मतलब ज्वेलरी है ना, पत्थर। रतन मंदिर मनोहर, ऐसा मनोहर मंदिर है। लेकिन आप कृष्णा बुक में उसका वर्णन पढ़ के वृंदावन में जाओ तो कई बार आपको झटका लगेगा, अरे मैंने क्या पढ़ा था और क्या पा रहा हूँ यहाँ पे। सबसे पहले वृंदावन में जाने के लिए हमको इतना ट्रैफिक मिलता है, आप एंटर करोगे वृंदावन में उधर ही फंस जाओगे आप। छतीकरा रोड पे आते आते आपकी गाड़ी अटक जाएगी, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। इतना पौ 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 ये वो ऐसा वैसा, इतना आवाज आता है, इतना भीड़ भड़ाका, उसके अंदर से गाड़ी का निकालना मुश्किल आपको। फिर वहां पे आपको खड़ा नहीं रखने देते हैं, गाड़ी तुरंत भगाते हैं। फिर आप चल के ऑटो रिक्शा लेके मंदिर में जाओ और मंदिर में आप देखोगे कृष्ण बलराम मंदिर में या और किसी मंदिर में आप जाओगे, इतनी भीड़, इतना भीड़ भड़का, धक्कम धुक्की, ये वो गर्मी, एकदम भयंकर गर्मी अभी चल रही है। और ऐसे में आदमी समझता है कि अरे ये वही वृंदावन धाम है जिसके बारे में मैं पढ़ रहा था और प्रभु जी सुना रहे थे, ऐसा झटका लग रहा है। और कई बार क्या होता है कि वृंदावन में आप गए और उधर एक लिखा रहता है जेब कतरों से साफ, आप देखते हो तो पता चला आपका बटुआ गायब हो गया है ना, वहां पे नहीं है। फिर बाहर आके देखते हो तो चप्पल गायब हो गई।
मेरे साथ हो चुका
है, बहुत लोगों के साथ होता है। मेरे ऑफिस में एक लेडी थी, वो पहली बार वृंदावन में गई, यू नो क्रिश्चियन थी। मैंने उसको बहुत बोला, बहुत साल पहले की बात है, मैं उसको बोलता था अरे जाके आना जाके आना, वो गई आके पहले ही मेरे को बोली कि मेरा चप्पल ही खो गया। तो ऐसा सब हम देखते हैं। फिर उधर देखते हैं कि सुअर घूम रहे हैं, आवारा कुत्ते घूम रहे हैं और रिक्शा वाला आपसे झगड़ा कर रहा है, पैसा ज्यादा ले रहा है, लूट रहा है, ऐसा बहुत कुछ का एक्सपीरियंस होता है। वो देख के हमको ऐसा लगता है ये चिंतामणि धाम है। इसके बारे में एक बार प्रभुपाद जी के साथ, प्रभुपाद जी के कुछ भक्त लोग थे मायापुर के अंदर, और मायापुर के अंदर इतने बड़े बड़े मच्छर होते हैं, इतना बड़ा डंक होता है, जींस पहनो तो जींस के अंदर घुस के काट लेते हैं इतना। तो अंदर इतना परेशान हो रहा था वो व्यक्ति यू नो मच्छरों की वजह से। तो प्रभुपाद जी आखिर पूछ ही लिया, बोला प्रभुपाद जी आपने तो कहा था कि मायापुर तो गोलोक वृंदावन के जैसा है, क्या गोलोक वृंदावन में भी मच्छर होते हैं क्या? ऐसा पूछ लिया वो। तो प्रभुपाद जी ने बोला अगर होते भी है तो काटते नहीं है, केवल हरे कृष्ण महामंत्र बोलते। तो समझ में नहीं आता हमको ये धाम है और हम मात खा जाते, चक्कर खा जाते, समझ में नहीं आता कि ये वृंदावन है। सबसे पहले आप वृंदावन में जाओ, कार्तिक में तो आपको अकोमोडेशन नहीं मिलता है।
सही
सबसे बड़ा प्रॉब्लम वहां पे वृंदावन में है, कहीं पे भी आप जाओ अकोमोडेशन नहीं मिलेगा। फिर होटल में जाओ प्रसाद नहीं मिलेगा, सब खत्म हो जाता है कई बार, और व्यक्ति बड़ा परेशान हो जाता है कि कहाँ पे जाऊं। फिर अगर यमुना पे आप पूजा करने को जाओ, राधा कुंड पे जाओ, तो इतने पांडे आते हैं आपके पीछे पीछे और खींचम तानी करते कि यहाँ से हमारे पास आओ, ये दो वो दो, दक्षिणा दो, यू नो कई बार जेब में हाथ डाल के निकाल लेते हैं, और ऐसा सब देख के व्यक्ति क्या होता है, भ्रमित हो जाता है। और जिसको अच्छी तरह से पता नहीं है भक्ति के सूत्र, और वो जाता है यमुना के अंदर तो क्या देखता है कि यमुना का पानी शुद्ध नहीं है, पूरा का पूरा कचरा है उसके अंदर, इतना सब ये है वो है, तो देख के आचमन करने का मन नहीं होता है। और कई बार तो ऐसा हमने देखा है कि लोगों ने यमुना का आचमन किया और वहीं धराशायी हो गए, क्योंकि उसके अंदर 98% पूरा का पूरा कचरा और केमिकल भरा हुआ है और इतना पॉइजनस है वो, क्योंकि यमुना का पानी यमुना तक पहुंचता ही नहीं है। हमारा दुर्भाग्य है ये। ऐसे हम लोग बहुत सारे लोग भजन गाते हैं, यमुना जल मा के सर घोड़ी स्नान कराऊं सामड़ा, हलके हाथे अंगो चोली लाड़ लड़ाऊं श्यामला। तो गाते हैं कि यमुना जल में केसर को घोल के और मैं आपको स्नान करवा रहा हूं, लेकिन यमुना का जल ही नहीं बचा है। आप सोचो यमुना के अंदर जो पानी बह रहा है, अनफॉर्चुनेटली वो दिल्ली की गंदगी का पानी है। यू नो सरकार हमारी इस तरह से इन लोगों ने सब करके रखा है कि यमुना का जल वहां तक पहुंच नहीं पाता है। यू नो यमुना के अंदर व्यक्ति जाके स्नान करने का तो बहुत दूर की बात है, यू नो, लेकिन एंटर करने की इच्छा नहीं होती हमारी। ऐसा सब, तो ऐसा सब धाम देख के व्यक्ति बड़ा चकरा जाता है, समझ में नहीं आता इसको क्या है। तो ये बंदर हमको बताते हैं कि देखो धाम को इस आंखों से देखने की कोशिश मत करो, मात खा जाओगे। जैसे ब्रह्मा जी मात खा गए थे जब ब्रह्मा जी ने कृष्ण की लीला देखी ऊपर से, और कृष्ण क्या कर रहे थे, बैठे थे ऐसे अपने ग्वाल बालों के साथ में, और सबने अपनी अपनी पोटली खोली थी, और कोई ग्वाला एक पोटली में से अपने खा रहा था, और उसके पहले कृष्ण जब कह रहे थे मस्ती कर रहे थे, है ना, कृष्ण की मस्ती ब्रह्मा जी की समझ में नहीं आ रही थी। कृष्ण मेंढक की तरह कूदी मार रहे थे, उनकी तरह आवाज कर रहे थे। फिर एक ग्वाला गया और देखा, और एक देखा खाली कुआं था, कुआं के अंदर उसने आवाज मारी, ए! तो एको हुआ वापिस, ए! तो ले काना, काना कोई है इसमें, तो काना गया और जाके बोले कौन है वे, तो वापिस आवाज आई कौन है वे, तो कुछ बोले कोई है भागो भागो इधर से भूत है। मतलब ब्रह्मा जी सोच रहे ये भगवान है, इसको समझ में नहीं आता है कि उसमें से एको हो रहा है। ब्रह्मा जी ऐसा सोच रहे थे कि कृष्ण को समझ में नहीं आ रहा है, फिर वो बंदर उधर उड़ी मार रहे थे कूद रहे थे, तो कृष्ण जाके उसकी पूंछ खींच रहे, तो सोचे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ईश्वर परम कृष्ण ऐसा पूंछ खींच रहा है बंदर की, है ना, ऐसे सब कुछ हो रहा है। और वो बैठ गए, एक वाला अपना समोसा लिया, काटा, झूठा किया, अरे कृष्ण मेरी माँ ने कितना अच्छा समोसा लिया, ये लो उसके मुंह में डाल दिया, झूठा काटा हुआ अपने मुंह से निकाल के उच्छिष्ट पूरा मुंह में डाल दिया। फिर दूसरे ने संदेश लिया, वो संदेश खाया, बोला देखो मेरी माँ ने कितना अच्छा संदेश सुना है, ऐसा खा लिया। तीसरे ने रसगुल्ला उठाया, ऐसा दबाया, पूरा पिचकारी का पानी उड़ के कृष्ण के मुंह में ऐसा एकदम। तो मतलब वो सोच रहे ये भगवान है। तब तक तो ब्रह्मा जी तो भ्रमित हो रहे थे। फिर कृष्ण ने देखा कि हमारे बीच में मधुमंगल नहीं है, ब्राह्मण का लड़का था लेकिन बेचारा छाछ लेके आया था, तो बड़ा शर्म हो रही थी कि सब लोग कृष्ण को अच्छे अच्छे व्यंजन खिला रहे, मैं छाछ कैसे खिलाऊंगा। छाछ मतलब ब्रज का वेस्ट उस समय माना जाता, छाछ का कोई कीमत नहीं था, वेस्ट को छाछ बोलते थे ना बिल्कुल, अगर आपको पता है पहले की बात। तो छाछ लेके आया और अकेला छुप के झाड़ के पीछे छाछ पी रहा था। तो कृष्ण तो सबके हृदय में बैठे हैं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्न विष्टो, भगवान तो ईश्वर सर्व हृदयानाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, कि भगवान सबके हृदय में बैठे, उनको पता चल गया मधुमंगल पीछे है, और बोले मधुमंगल क्या कर रहा है तू अकेला खिला इधर। तो मधुमंगल ने सोचा अभी कृष्ण आएंगे और मेरा छाछ मांगेंगे, ऐसा छाछ मैं कैसे दे दू उनको। तो एक घूट के अंदर वो छाछ को मटके को गले में पूरा मुंह में डाल दिया, लेकिन वो तो एक साथ उतरा नहीं, मुंह में अटक गया करके। तो आया वाला कृष्ण, तो कृष्ण आए और दोनों मुट्ठी बंद करके और मारा जोर से छपा, और पूरा मुंह से छाछ निकल के और कृष्ण के पास, और कृष्ण ने उसका ग्रहण किया, और ब्रह्मा जी ऊपर से देख के चकित हो गए, बोला बहुत इनफ इज इनफ, ये व्यक्ति है ऐसा। ब्रह्मा जी ने उनको टेस्ट देना चाहा, बछड़ों को छुपा दिया, ग्वालों को छुपा दिया, और बाद में फिर उनको समझ में आया कि कितनी बड़ी गलती की, और ब्रह्मा जी के सामने कृष्ण देखते नहीं रहे थे। तो इतने बड़े ब्रह्मा जी जिसके कितने सिर है, हमारे कितने,
एक,
तो हमसे ज्यादा है उनका, और हमारे सिर के अंदर गोबर भरा हुआ है ना। प्रभुपाद जी पे किसी ने आरोप लगाया, वाई यू आर ब्रेन वॉशिंग अवर चिल्ड्रन, प्रभुपाद जी सेड आई एम नॉट ब्रेन वॉशिंग, आई एम वॉशिंग द ब्रेन, मैं जो है वो ब्रेन वॉश कर रहा हूँ इनको, इनका ब्रेन को वॉश कर रहा हूँ, क्योंकि ब्रेन में क्या है पूरा गोबर भरा हुआ है। काउडंग। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति को यही पता नहीं है कि आत्मा और शरीर में क्या अंतर है, उसको क्या समझ में, गोबरी भरा हुआ है तो। लेकिन ब्रह्मा जी के सिर में गोबर नहीं भरा हुआ, ब्रह्मा जी के सिर में किस क्या भरा है, ज्ञान। क्योंकि ब्रह्मा जी सत, चित और आनंद, तीन चीज होती है ना, सत मतलब इटरनल, चित मतलब नॉलेज और आनंद मतलब आनंद, ठीक है, ब्लिस। तो चित जो है, ब्रह्मा जी का सारा शरीर चित्त से बना हुआ है, केवल ज्ञान से बना है। और ज्ञान लेके चार सिर लेके पूरा ऊपर से नीचे ज्ञान से भरा हुआ ब्रह्मा जी समझ नहीं पाए कृष्ण की लीला। और कभी कभी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं और हम लोग डाउट करते हैं और कई बार दिमाग से समझने की कोशिश करेंगे कि हाँ ऐसा क्यों किया भगवान ने, आखिर ऐसा क्यों हुआ, यू नो पांडवों के साथ इतना क्या, क्यों अपराध क्यों हुआ ऐसा, द्रौपदी का चिरहरण क्यों हुआ ऐसा, बहुत सारा दिमाग में हमारे भक्त बनने के बाद भी घूमते रहता है और समझ में नहीं आता है। तो कृष्ण को क्या समझ पाएंगे, ब्रह्मा जी नहीं समझ पाए, हम लोग क्या समझ पाएंगे। तो ये बंदर हमको बताते कि देखो ये धाम है वृंदावन, ये ऑर्डिनरी नहीं है बाबा, इसको अपने चश्मे से देखने की कोशिश मत करो, अपने आंखों से देखने की, इसलिए वो चश्मा निकाल के ले जाते हैं।